ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस पावन वेला में हमारे बीच में है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। हिसार की भूमि पर पहली बार उनका यहाँ आगमन हुआ, इसलिए हम सभी तहे दिल से दीदी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच में है आदरणीय रमेश दीदी जी, जो कि हिसार सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका है, और साथ में ही एक महान हस्ती भी हमारे बीच में है, स्वामी राजदास जी महाराज, जो कि श्री कृष्ण परिणामी बाल सेवा आश्रम के संचालक हैं। तो अभी हम इन सबका एक स्वागत गीत के द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे बीच आ रही हैं शिखा बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में दीदी जी आए हैं, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन। आज दीदी जी के यहाँ आने की खुशी में हम सब की जीवन रूपी पतंग की डोर आज हम सब पूरी तरह से बाबा के हाथ में दे देंगे। ये दर है पर मातमा दा, इथे रब दिया रहम तावर दिया ने, खैर पवे ना जिना नू होर किथे, एदे दर ते झोलियां भर दिया ने। वड़िया वड़िया हस्तियां संसार दिया, एदे दर ते सजदा कर दिया ने। ओ सानू रहंदी ए आस तेरे प्यार दी, इथे डूबदी बेड़ियां तरदियां ने। ओ सानू रहंदी ए आस तेरे प्यार दी, इथे डूबदी बेड़ियां तरदियां ने। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए बाबा, तेरा द्वारा ए, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए बाबा, तेरा द्वारा ए, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा। मत विसरो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही, हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमरे नाही। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, तू डोर हथों छटी ना मैं कटती जावांगी, तू डोर हथों छटी ना मैं कटती जावा, अज मलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा, अज मलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा, हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा, हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा, फिर जन्म मरण दे बंधन, फिर जन्म मरण दे बंधन, तो मैं बचती जावांगी, तो मैं बचती जावांगी, तू डोर हथों छटी ना मैं कटती जावांगी, तू डोर हथों छटी ना मैं कटती, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा
का। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो बुकेस के द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। आदरणीय उषा दीदी जी, आदरणीय स्वामी राजदास जी महाराज, आदरणीय रमेश दीदी जी का भी बुकों से स्वागत करेंगे। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे। कैंडल लाइटिंग के लिए हमारे स्टेज पर उपस्थित आदरणीय उषा दीदी जी, रमेश दीदी जी, स्वामी राजदास जी महाराज और साथ में हमारे मधुबन से आए हुए सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो सभी स्टेज पर आएंगे कैंडल लाइटिंग के लिए। और आप सभी के पास मोबाइल होगा, आप अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके कैंडल लाइटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितना सुंदर नजारा लग रहा है। अभी सभी के मोबाइल की लाइट ऑन नहीं हुई। मधुबन के सभी भाई स्टेज पर आएंगे। अनीता दीदी जी भी स्टेज पर आएंगे। सुंदर ये दृश्य है। परम धाम से ज्योति बिंदु परमात्मा भी हम सबके बीच में इस सुंदर नजारे के बीच में है। अभी मैं आदरणीय स्वामी राजदास जी महाराज से अनुरोध करूंगी। वो हमारे मधुबन से आई हुई आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी को सम्मानित करेंगे शोल ओढ़ा करके। सभी तालियों से दीदी जी को सम्मानित किया गया। महाराज जी की तरफ से एक मोमेंटो दीदी को दिया जाएगा। बहुत सुंदर श्री कृष्ण जी का चित्र। अभी मैं स्वामी राजदास जी महाराज से अनुरोध करती हूँ कि वो कुछ समय के लिए, समय बहुत थोड़ा है तो थोड़े समय के लिए अपनी शुभकामनाएं हम सभी को देंगे। स्वामी राजदास जी महाराज।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परम पूज्य परम आदरणीय जो हम सभी के जीवन की परिभाषा को बदलने के लिए और प्रथम बार हमारे इशार शहर में पधारने पर राजयोगिनी उषा दीदी का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूं। साथ में आज मैं बोल रहा था ये मेरा हाथ होना आज धन धन्य हो गया। मैंने इन हाथों से ऐसे दिव्य विभूति को, ऐसी दिव्य आत्मा को मुझे इन हाथों से सम्मानित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं पूजनीय रमेश दीदी, अंतिमा दीदी का भी दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद हूं। मैं जब पहली बार माउंट आबू गया पिछले साल, एक बात कहना चाहूंगा मैं आप सभी से, मैं वहां जब गया पता नहीं था मुझे, कुछ पानी के लिए गया था, मुझे कुछ मिलेगा वहां कुछ पानी के लिए गया था, लेकिन सच्ची बताऊं वहां जाकर मैं खो गया। क्या हुआ मेरा, सच्ची बताऊं मैं, सबसे पहला मेरा एक अहम, एक ईगो या मैंपन बोलते हैं ना, वो मेरा चूर चूर हो चुका था। मैं विद्वान बन के गया था और दास बन के आया, सच कहता हूं मैं। मैं सोचता था ये ब्रह्म कुमार क्यों लगाते हैं, तो मैंने अपना ही एक अर्थ निकाला, राजा की संतान राजकुमार या राजकुमारी कहलाते हैं, ब्रह्म की संतान ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी कहलाते हैं, मुझे पता लग गया। और पूजनीय दीदी हमारे बीच गीता का संदेश लेकर आई है। गीता एक विश्व की अमूल्य धरोहर है, जिसमें न कोई जात पात का भेद है, न कोई धर्म संप्रदाय का भेद है, न मनुष्य मात्र में किसी का भेद है, वो तो सार्वभौम यूनिवर्सल एक ज्ञान है, वो हम सब के लिए ही वो एक अद्भुत ज्ञान है। बस आज के सामयिक समय में गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है, दीदी मां यहां पर हम सबको गीता सुनाने, गीता के प्रवचन, गीता के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए पहुंची हैं। गीता क्या है, महाभारत में कौरव और पांडव आमने सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं, और ऐसे मौके पर आप अंदाजा लगाओ जहां युद्ध हो रहा हो, जहां पर ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े भयंकर हथियार का प्रयोग होने जा रहा हो, और ऐसे मौके पर जहां श्री कृष्ण ने गीत गाया, उसी का नाम गीता है। गीत कहां गाया जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा हो वहां पर हम गीत गा सकते हैं क्या, मुख से गीत नहीं हुआ तो गालियां या अपशब्द निकलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे महापुरुष, एक ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे अवतारी हुए हैं जिन्होंने युद्ध के बीच में गीत गाया, और आज वो इसलिए जरूरी है कि आज हमारे सब के अंदर एक महाभारत चल रहा है। कौरव पांडव उस समय भी थे, आज भी है, कौरव पांडव सत्ययुग में भी थे, आज भी है, त्रेता युग में भी थे, आज भी है, उसी अंतर्द्वंद को, उसी महाभारत का युद्ध लड़ते हुए आज यदि हम ऐसे प्रोग्राम में आकर ये गीत गाएंगे तभी हमारा गीता सुनना सफल हो जाएगा। तो बड़े अच्छा मैं पूज्यवती राजयोगिनी उषा दीदी मां का स्वागत करके आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और हिसार की धरती पर ऐसे ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे ऐसे अद्भुत आत्मा जब पधारती हैं, तो हमारी हिसार की धरती भी अति पावन हो जाती है। कुछ समय पहले मुझे राजयोगिनी माता जानकी से भी मिलने का यहीं पर सौभाग्य मिला, उनसे मिलकर ऐसा लगा, जब मिलता हूं ना ऐसा लगता है कि एक अंदर से है ना कुछ निकल रहा है, एक अंदर से है ना कुछ खोता सा जा रहा हूं, और एक बात एक शायर कहकर मैं अपना स्थान लूंगा। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं, अब पता मेरा नहीं। बहुत बहुत आभार, मुझे इस योग्य समझा पूज्य दीदी ने, और ऐसे दिव्य विभूति को सम्मानित करने का मुझे गौरव हासिल हुआ। गीता का 15वें अध्याय का मुझे एक श्लोक बार बार याद आ रहा है, और मुझे लगता है कि आप सभी जो ब्रह्म कुमारीज हैं उस पर चल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, न तद भाषयते सूर्यो न शशंको न पावक, यत गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। हम उस पर ब्रह्म की बातें करने के लिए यहाँ पर, जहाँ पर जाने के बाद आवागमन का चक्र बिल्कुल खत्म हो जाता है, जहाँ ये आत्मा परम शांति को, परम मोक्ष को और परम शांति को, क्योंकि नाम भी ओम शांति है। कृष्ण कहते हैं वो धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद परम शांति की अनुभूति होती है, वो हमारा परम धाम है, दिव्य धाम है, ब्रह्म धाम है। वहाँ की बात बताने के लिए हिसार की धरती पर पूज्यवती दीदी जी आई हैं। मैं संपूर्ण हिसार की ओर से और अपने आश्रम कैमरी की ओर से और आप सभी की ओर से दीदी माँ का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागतम, प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया राजदास जी महाराज का, बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारी दीदी जी का अभिनंदन किया, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। अभी दीदी जी भी आदरणीय राजदास भाई जी को, मेरे मुंह से हमेशा भाई जी निकलता है, इनसे हमेशा मुझे भाई की फीलिंग आती है, तो भाई जी को ईश्वरीय सौगात देकर के सम्मानित करेंगे। आप भी स्टेज पर आ जाएं। अभी जिस पल का हमें बहुत देर से इंतजार था, आदरणीय उषा दीदी जी से सुनने का, आदरणीय उषा दीदी जी का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में दीदी जी का परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय दीदी जी का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, उसके बाद 74 में दीदी अपने परिवार के साथ भारत में आ गए। भारत में आने के बाद इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया, ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन के अंदर धारण किया और 1980 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। सन 1985 में युवा पद यात्रा में बॉम्बे से दिल्ली तक की पद यात्रा का श्री कलश दीदी जी को सौंपा गया। इस बीच दीदी जी ने बहुत ही सुचारू रूप से सेवाएं दी। अक्सर टीवी पर भी हम आदरणीय उषा दीदी जी को देखते हैं, ये सभी की बहुत ही पसंदीदा वक्ता हैं। आपने दो पुस्तकें भी लिखी हैं, अनेक देशों में जाकर के वहां के लोगों में आध्यात्मिक ऊषा जगाई है। जैसे दीदी का नाम है वैसे ही उनके कर्तव्य हैं, जैसे हम कहते हैं शिव अर्थात कल्याणकारी, इसी तरह से जैसे दीदी का नाम है ऊषा, तो सही में ये एक ऊषा की किरण हम सबके बीच में है। आदरणीय दीदी जी ने रामायण और भगवत गीता, ये दो मुख्य जो ग्रंथ हैं, इनका बहुत ही गहन अध्ययन किया। गीता भागवत रामायण पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन उसका इतना गहन अध्ययन करके उसके आध्यात्मिक रहस्यों को बाहर निकालना, ये कर्तव्य हमारी दीदी जी ने किया। तो अभी हम दीदी जी से श्रीमद् भगवत गीता के गुह्य रहस्यों का के बारे में अभी सुनेंगे। आदरणीय उषा दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद् गीता के प्रवचन माला के आज शुभारंभ में हम सभी जीवन के अंदर अमृत पान करने के लिए यहां पहुंचे हैं। जिस तरह कहा गया कि श्रीमद् भगवद् गीता परमात्मा का गाया हुआ मधुर गीत है, कि जिस गीत से अनेकों का जीवन परिवर्तन हो या जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाए, ऐसा अद्भुत दिव्य ज्ञान परमात्मा ने अर्जुन को दिया। श्रीमद् भगवद् गीता में वो अमृत तत्व है कि जिस अमृत तत्व से व्यक्ति अमर पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति तो क्या जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि उसको माना गया, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवान वाच लिखा है, वो भी फर्स्ट पर्सन में। दुनिया के बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ है, किसी न किसी दिव्य आत्मा की वाणी है, महान आत्मा की वाणी है, लेकिन परमात्मा महावाक्य नहीं है उसमें। और इसीलिए श्रीमद् भगवद् गीता को सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि कहा गया है। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद् गीता के अंदर सभी वेदों का सार समाया हुआ है। उनको माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, इसी तरह श्रीमद् भगवद् गीता भी हर आत्मा में अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, इसलिए उसको माता की उपमा दी गई। दूसरा, उसको माता इसीलिए कहा गया कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ होता है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवद् गीता का संबंध भी एक माँ की भांति हर धर्म के साथ है। जिन धर्म पिताओं ने जो अमृतवाणी का उच्चारण किया, वो श्रीमद् भगवद् गीता से ही प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण किया है और उसी के आधार पर उस महानता के शिखर को प्राप्त किया है। महाभारत के अंदर जो युद्ध की बातें हैं पांडव और कौरव के बीच में, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में है। उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द होली वॉर कहा, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में है। और जिन महान आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों में हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जितेंद्रिय होने की बात की कि हर कर्मेंद्रिय को जीतना कैसे है, क्योंकि यही मन को आत्मा को भटकाने वाली है। ये जितेंद्रिय होने की बात श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय से ही कहा कि हे अर्जुन, कर्मेंद्रिय को जीतो, अपने मन के अंदर कोई आसक्ति नहीं लाओ, अपरिग्रहता को अपनाओ, जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत है वो श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान ने अर्जुन को आज से 5000 साल पहले सुनाए थे। इसी तरह महात्मा बुद्ध को भी महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों में हिंसक वृत्ति को पैदा न कर दे, तो उन्होंने भगवद गीता से कर्म योग को उठाया और उनके पवित्र धर्म ग्रंथ धर्म पद में कर्म योग का वर्णन किया कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म योगी कैसे बनना है, यह मानव तुम्हें कर्म योगी कैसे बनना है, कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करो। और इसीलिए उन्होंने कोई के लिए प्रेरित किया, तो श्रीमद् भगवद गीता से उन्होंने कर्म योग को उठाया तो हर धर्म का संबंध अगर देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता से अवश्य जुड़ा हुआ है। सभी दिव्य आत्माओं ने गीता को ही आधार बताया हुआ है, इसीलिए सर्व शास्त्रों में शिरोमणि के दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गीता को माना गया है। ऐसा उसमें विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जो अतुलनीय है। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, अर्थात ये मानवता का शास्त्र है, पूरी मानव जाति के लिए है, किसी एक संप्रदाय या धर्म के लिए नहीं है। तब कहा कि उसमें विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से गीता अतुलनीय है। उसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णवेद ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु ये भगवद गीता का ज्ञान हम सभी तक कैसे पहुंचा? थोड़ी सी अगर उसकी भूमिका देखी जाए तो हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस महान धर्म ग्रंथ की रचना करने के लिए। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि में बैठते थे तो कभी कभी ध्यान मग्न स्थिति में चले जाते थे, और उस ध्यान मग्न स्थिति में उन्हें एक बार यह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, भगवद गीता के ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। उन्हें लगा इतना अमूल्य ज्ञान, ये तो पूरी मानव जाति तक पहुंचना चाहिए। परंतु जब समाधि अवस्था से नीचे आए और उसको लिखने का प्रयास किया तो कुछ बातें लुप्त हो गई, लिख नहीं पाए। उन्हें पता था कि ये ज्ञान प्रभु रोज सुनाने वाले हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन इतना अमूल्य ज्ञान प्रथम दिन का मिस हो गया, हम तक नहीं पहुंचा। तब कहा जाता है कि उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही न करूं तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला मिल जाए ताकि समाधि अवस्था में जो कुछ भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो उसको लिख सके और मनुष्य तक पहुंचा सकूं। तब उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, और इसीलिए महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी का आवाहन करते हुए गणेश जी को निवेदन करते हैं अपना लेखक बनने के लिए, और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट महाभारत के आरंभ में ही ये बात उन्होंने स्वीकार किया कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन उस ज्ञान को जो मैं लिखवा रहा हूं ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है, स्पष्ट सत्य उन्होंने स्वीकार किया है। भावार्थ किए कि जैसे आज मुझे किसी छोटे बच्चे को इतना ज्ञान देना हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है सच बोलो। परंतु अगर रोज सुबह उठ करके मैं उसको उपदेश देती रहूं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए, चार दिन तो वो मेरी बात सुन लेगा, पांचवें दिन शायद यही कहेगा मुझे पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए। अब आप रोज रोज मुझे ये बात नहीं कहो, कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन अगर उस बच्चे को मुझे उसका मर्म बताना हो और मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सच का पात्र लूं, एक झूठ का पात्र लूं, और झूठ बोलना कितना आसान है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अंत में जब परिणाम सामने आता है तो शायद खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सच बोलना कितना डिफिकल्ट है, सच बोलने वाले के सामने कितनी चुनौतियां आती है, अनेक प्रकार की परीक्षाओं को पार करना पड़ता है, लेकिन अंत में जब परिणाम आता है तो बहुत सुखद अनुभव होता है। उस कहानी के माध्यम से जब ये बात बताती हूं तो वो कहानी उस बच्चे के मन के अंदर छप जाती है, और जीवन में जब कभी ऐसा मौका आए जब उसको चुनाव करना हो कि सच बोलूं या झूठ बोलूं, और उस वक्त उसको वो कहानी याद आ जाती है कि बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, चलो प्रयोग करके देखता हूं, सच बोल के देखता हूं। मेंटली प्रिपेयर भी हो जाता है कि परीक्षाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अंत में परिणाम बहुत सुखद होगा। इस निश्चय के साथ वो सच को अपनाता है। उसको मालूम था झूठ का रास्ता बहुत सरल था, कोई चुनौती नहीं, लेकिन अंत में परिणाम बहुत कष्ट भरा होगा, और इसलिए उस कहानी से प्रेरित होकर के वो सच का मार्ग अपनाता है। अनेक परीक्षाओं का सामना करते हुए जब परिणाम को अनुभव करता है उसके बाद शायद वो हमेशा के लिए सच का ही मार्ग अपना ले। ठीक इसी तरह महर्षि वेदव्यास जी भी यहां यही कहना चाहते हैं कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन उस ज्ञान को सीधा अगर कहा जाए तो शायद मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं होगी जो उसको हजम कर सके, पचा सके और उस मार्ग पर चल सके। इसलिए उसने अपनी मन की कल्पना से एक कथा का निर्माण किया जिसको कहा महाभारत की कथा, और उस कथा में उसने पात्र लिए पांडव और कौरवों के रूप में, जो वर्तमान समय है वो पात्र इस संसार के अंदर, और धीरे धीरे कैसे भगवान का साथ पांडवों के साथ है, कौरवों के साथ नहीं है। भले कौरवों में भीष्म पितामह जैसे भी थे जिसमें जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन फिर भी भगवान के साथ का अनुभव नहीं कर पाए। गुरु द्रोणाचार्य जैसे थे, गुरु थे, फिर भी भगवान के साथ का अनुभव नहीं कर पाए। और पांडवों में जो भगवान के साथ को अनुभव करने वाले थे, पांडव माना जिन्होंने भगवान से प्रीत रखी और कौरव माना जो भगवान से विपरीत रहे, तो अपने मन की कल्पना से कितना सुंदर एक कथा के माध्यम से वर्तमान समय के लोगों को कुछ समझाना चाहा, भगवान का उपदेश देना चाहा। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें पूछते हैं कि किसी ने पहले तो ये बात कही नहीं, हर एक ने यही बताया पांडव भी है कौरव भी है और युद्ध हुआ था यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो क्या ये सब मन की कल्पना है? हम नहीं कहते हैं, महाभारत का आदि पर्व का 77वां श्लोक कहता है। लेकिन आज तक किसी ने ये बताया नहीं हमें, क्यों नहीं बताया? वो तो उनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं बताया गया, ये श्लोक स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि ये मन महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना है। लेकिन कल्पना की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल में हुआ है, हो रहा है। कैसे? आज से 500 साल पहले नॉस्ट्राडेमस होके गए फ्रांस में, और नॉस्ट्राडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा और उसको लिखा, भविष्यवाणियों के रूप में उसको लिखा, लेकिन काव्य के रूप में लिखा। और उस काव्य में इतने अलंकारिक शब्द यूज किए कि आज भी जब लोग नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ ये बात नॉस्ट्राडेमस ने कही थी, पहले नहीं बता सकते, पहले नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह हमारे भारत में ऐसे महर्षि हो गए जिन्होंने वर्तमान समय को 5000 साल पूर्व देखा था समाधि अवस्था में, कि आज के मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी होगी और वो सब उन्होंने लिखा एक कथा के रूप में। इसलिए कहा कौन कहता है कि महाभारत नहीं हुआ था? आज हर घर में क्या चल रहा है, महाभारत चलता है या नहीं चलता है? तो 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा और उसको ये कथा के रूप में लिखा उन्होंने, बहुत सत्य लिखा। लेकिन मनुष्य ने क्या समझ लिया? हाँ कुरु परिवार हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, आपस में बनी नहीं तो युद्ध किया और पांडवों की विजय हुई, लेकिन ये कथा से मुझे जीवन में क्या प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में क्या उसका बेनिफिट है, उसको आत्मसात नहीं कर पाए। और जहां आत्मसात ही नहीं कर पाए तो इतना अनमोल ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सके, उसके परिणाम का अनुभव नहीं कर सके। श्रीमद् भगवद् गीता में इतना गुह्य ज्ञान समाया हुआ है, जिस गुह्यता को समझना शायद आज के मनुष्य के बस की बात नहीं है। कैसे पता चले? तो कहा जाता है कि जब गणेश जी आए लेखक बनने के लिए तो गणेश जी ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई अल्टरनेट नहीं था, उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त क्या थी? उनकी शर्त यही थी कि समाधि अवस्था में जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है और समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को समझकर लिखना, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य कर लिया और कहा जाता है, एक निवेदन जरूर रहेगा कि जिसके पास भी खिलौना है ना, ये छोटा बच्चा है ना जो बार बार रोता रहता है, बीच बीच में आपका ध्यान तोड़ता रहता है, उसके गुलाम नहीं बनना। साधन जरूर मिला है, विज्ञान की दुनिया में जीते तो विज्ञान ने साधन दिए हैं, लेकिन इस साधन को मालिक बन के प्रयोग करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसके गुलाम बन गए ना तो जीवन आपका खत्म कर देगा। इतनी अच्छी बातें सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का बच्चा रोता है ना, आसपास वाले बैठे हुए का चेहरा देखने जैसा होता है। सारे लोग उसको कहते बंद कर, क्या बज रहा है ना, चेहरा इतना बदल जाता है, सोचते हैं इतनी अच्छी बातें सुनने का मौका कभी कभी जीवन में मिलता है, उसमें से एक पल भी, एक बात भी मिस होना नहीं चाहते हैं। इसलिए बंद करके रखो, उसका मुंह बंद करो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसीलिए कहा कि गणेश जी ने जब उस शर्त को मान्य रख लिया कि ठीक है, मैं हर बात को समझकर लिखूंगा, और पहला ही श्लोक का उच्चारण जब हुआ भगवद गीता का, कि जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, ये संजय तो मुझे उसका वर्णन करके बताओ। तो जब ये कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधी बात करते थे, भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसका वर्णन करके बताओ मुझे, परंतु कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र ये विशेषण क्यों जोड़ा गया। तो गणेश जी को प्रथम श्लोक में ही रुकना पड़ा ये समझने के लिए। फिर कहा कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में, अर्थात आज से 200-300 साल पहले भी ये भावना थी कि सब कुछ अपना है ना। गांव में जब रहते थे, तेरे मेरे का भाव नहीं होता था, ये मेरा है ये तेरा है, झगड़ा नहीं होता था। अगर किसी को आवश्यकता पड़ी तो कहते थे अरे अपना ये कोई बात नहीं, ये भावना थी। और आज से 5000 साल पहले जब सारे संसार के अंदर, अगर 200-300 साल पहले भी ये भावना हो तो 5000 साल पहले कैसी भावना होगी। पूरा गांव एक परिवार की रीति से रहता था और वहां एक ही परिवार के, गुरु परिवार के पांडव और कौरव, और धृतराष्ट्र कहता है पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, तो एक ही परिवार में तेरे मेरे का भाव, ये तो कलयुग में ही हो सकता है, जहां दो भाई सगे हो तो भी कहेगा ये तेरा है मेरा है। छोटेपन से ही दो बच्चे लड़ते तो क्या कहते, तेरा है मेरा है, मेरे को हाथ नहीं लगाना, कहते कि नहीं कहते, ये आज की भावना है, आज से 5000 साल पहले की ये भावना नहीं थी। इसीलिए कहा कि महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था अपनी समाधि में, कि एक ही परिवार के लोग कैसे तेरे मेरे के भाव में आकर के उस भावना को विकसित करते हुए आपस में लड़ेंगे। तो गणेश जी उस बात को समझ नहीं पाए, ये तेरे मेरे एक ही परिवार में तेरा मेरा कहां से आया, उसको समझने के लिए भी उसको रुकना पड़ा। और कहा जाता है गीता ज्ञान इतना सूक्ष्म और इतना गहन था, इतने दिव्य रहस्य उसमें समाये हुए थे कि कभी कभी वो खो जाते थे, लिखना भूल जाते थे, और कभी कभी कुछ बातों को अच्छी तरह समझने के लिए भी रुकना पड़ता था। अब गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को रुकना पड़े तो आज के इंसान उसकी गहराई को कितना समझ पाएंगे। इसीलिए आज दुनिया के अंदर गीता के ऊपर टीकाएं लिखने वाले भी बहुत है, टीकाएं करने वाले भी बहुत है, शास्त्रार्थ कर देते हैं, नहीं समझा तभी तो। इसकी गहराई, उसके गुह्य रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है, है ना? जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मन में एक विचार आया कि महर्षि वेदव्यास जी जिस काल में थे, और भी लोग तो होंगे आसपास में, अकेले तो नहीं होंगे समाज के अंदर, संसार के अंदर, वो किसी भी ऋषि मुनि को बुला करके कहते थे कि भाई तुम मेरा लेखक बन जाओ। खास गणेश जी का आह्वान किया, और किसी ऋषि मुनि का न बुला करके, लेखक न बना करके, महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को लेखक क्यों बनाया? लेकिन तब समझ में आया कि समाधि अवस्था यानी बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस, बहुत ऊंची ऊंची मानसिक स्थिति, और उस ऊंची मानसिक स्थिति में एक सुप्रा कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाए, उस सुप्रा कॉन्शियसनेस में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। किसी भी व्यक्ति को बुला करके अपना लेखक बनाते थे, किसी भी ऋषि मुनि को बुला करके अपना लेखक बनाते थे, और उसकी मानसिक स्थिति अगर उस स्तर की नहीं होती थी तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, क्योंकि गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि के देवता, द लॉर्ड ऑफ विजडम, ताकि समाधि अवस्था की हर एक बात की गहराई को वही आत्मा समझने की क्षमता रखती है जो बुद्धि के देवता हो, है ना? बुद्धिवानों की बुद्धि हो वही उसको समझने की क्षमता रखता है। इसीलिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, और तभी ये महान धर्म ग्रंथ की रचना हुई। इसीलिए कहा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बहुत गहरा है, क्योंकि एक ही पुस्तक के अंदर हर स्तर का समाधान उन्होंने दिया है। एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान है, एक पारिवारिक स्थिति का समाधान है, एक सामाजिक स्थिति का समाधान है, वैश्विक स्थिति का समाधान है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान है। एक ही पुस्तक के अंदर हर स्तर का समाधान मिलेगा, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर स्तर का समाधान मिलेगा, सूक्ष्म से स्थूल तक हर स्तर का समाधान मिलेगा। कैसे? तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान कैसे है, जिसको अर्जुन के रूप में दर्शाया है, और अर्जुन के रूप में जब दर्शाया है तो आज के इंसान को भी अर्जुन के रूप में दर्शाया हुआ है। क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी चुनौतियां आती है जिस चुनौती से उसको गुजरना पड़ता है और उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें टूटती है। कुछ लोग तो इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते, लेकिन कुछ लोग उसी संघर्ष में अपने जीवन को समाप्त भी कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आज के युग में। इसीलिए कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अर्जुन की तरह है। अब सोचो, अर्जुन एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास, निराश, हताश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान को विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास समाप्त तो हो गया, भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनस्थिति, तो क्या भगवान पर विश्वास नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर विश्वास कम हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसी मनस्थिति जो हुई उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था कि जीवन के अंदर आज हर व्यक्ति का जीवन देखा जाए तो संघर्ष है। हर व्यक्ति अपने जीवन में युद्ध कर रहा है, कोई हालातों से युद्ध कर रहा है, कोई परिस्थितियों से युद्ध कर रहा है, कोई समस्याओं से जूझ रहा है, कोई महंगाई से युद्ध कर रहा है। कौन व्यक्ति है जो जीवन में संघर्ष नहीं कर रहा है? हर इंसान संघर्ष कर रहा है, अर्जुन की तरह। जीवन के कई संघर्षों को तो पार किया, लेकिन जीवन में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है और शायद उस वक्त अपनी प्रार्थना में भगवान से ही कहता है कि प्रभु, अब मुझे और संघर्ष नहीं करना है, मैं थक गया हूं। कहते हैं ना, थक जाते हैं, जिसको आज के युग में कहा जाता है डिप्रेशन। और ऐसी जब डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाए तब व्यक्ति की हालत कैसी होती है? जीवन जीना ही नहीं चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है अपनी जीवन लीला को। इसीलिए कहा कि जब ऐसी परिस्थितियों से जब गुजरता है, जब उसके पास कुछ नहीं बचता है, तब वो शायद अपने प्रार्थना में भगवान से ही कहता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, अब जीवन नहीं जीना है। अर्जुन के जीवन में अगर देखा जाए तो अर्जुन के जीवन में क्या था? अनेक युद्ध उसने लड़े, फिर महाभारत के समय उसने मना क्यों किया? आज दिन तक जो लोग हमें बताते हैं कि जब उसने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, तो लोग हमें क्या कहते हैं? जब उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, तो उसका मोह जागृत हो गया, इसलिए उसने मना कर दिया। यही कहते हैं ना सभी। सोचने की बात तो ये है, लेट अस बी प्रैक्टिकल। सोचने की बात ये है, जिन बड़ों ने बचपन से ही पांडवों के साथ अन्याय किया हो, क्या उनके प्रति कभी मोह जागृत होगा? मान लो कि आपके परिवार में आपके परिवार के बड़े आपके चचेरे भाइयों को ही सब कुछ देते रहे और आपके साथ अन्याय पर अन्याय करते रहे, जहां बोलना चाहिए वहां भी नहीं बोले, वनवास भेज दिया, धृतकिरा में हरा दिया, धोखे से हराया, द्रौपदी का चीर वस्त्र हरण हुआ, उस समय भी कोई बड़े बोले नहीं, क्या उनके प्रति मोह जागृत हो सकता है? हो सकता है। अगर आपके परिवार में आपके परिवार के बड़े कभी आपके साथ न्याय न करे, हमेशा आपके साथ धोखा ही होता रहे, तो क्या आपको कभी उनके प्रति मोह जागृत होगा? हो सकता है। अर्जुन का भी मोह जागृत नहीं हुआ था, अर्जुन का भी मोह जागृत नहीं हुआ था, तो फिर उसने युद्ध करने के लिए क्यों मना किया? उनके प्रति नहीं जागृत हुआ था, मोह जागृत जरूर हुआ था, लेकिन उन बड़ों के प्रति नहीं हुआ था। लेकिन जब वो अपना रथ बीच में ले गया और दोनों सेनाओं को देखा, एक तरफ कौरव सेना को देखा और दूसरी ओर अपनी सेना को देखा, तब उसको अपने पुत्र नजर आए। अपनी सेना में उसको अपने पुत्र खड़े नजर आए, तब उसको याद आया कि द्रौपदी ने पूछा था भगवान से कि हे प्रभु, ये युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो भगवान ने कहा 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र? तो कहा पुत्र की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन जानता था कि मेरे पुत्रों की गारंटी भगवान ने नहीं ली है, और कौरव हमें तो नहीं मार सकेंगे, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए वो मेरे पुत्रों को जरूर खत्म कर सकते हैं। ये बात जैसे ही उसको आई, तब उसको लगा कि मैं युद्ध क्यों करूं? उस राजगद्दी को पाने के बाद क्या मुझे उस गद्दी पर बैठने का सुख मिलेगा, या हर वक्त मेरा मन कचोटता रहेगा कि ये गद्दी को प्राप्त करने के लिए, ये राज्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने पुत्रों की बलि दी है? कोई भी पिता का पुत्र मोह जागृत होना स्वाभाविक है। इसीलिए उन बड़ों के प्रति उनका मोह जागृत नहीं हुआ था, लेकिन मोह जागृत किसके लिए हुआ था? अपने बच्चों के लिए। इसीलिए वो भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये राजभाग नहीं चाहिए, मैं जंगल में अपने बच्चों के साथ रह करके कम से कम सुख की रोटी तो खाऊंगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है जहां मेरे अपने ही न रहे, तो मुझे उसका सुख थोड़ी भासेगा। इसलिए जहां बच्चों की बात आती है ना, तो हर पिता कमजोर पड़ता ही है। आज किसी भी पिता बहुत सिद्धांतवादी हो, लेकिन अगर उसके बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है और फिरौती के रूप में जो कंडीशन रखता है, कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, वो कमजोर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पुत्र मोह चीज ऐसी होती है कि जीवन के हर संघर्ष में इंसान को कमजोर करती ही है, और तब जाकर के लास्ट में उसने कहा कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया। ये बड़ों के लिए नहीं था, क्योंकि उन बड़ों के लिए उसको मोह था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी न्याय किया ही नहीं पांडवों के साथ, हमेशा ही अन्याय करते रहे, तो कौन सा मोह जागृत होगा उनके लिए? लेकिन पुत्र मोह जागृत होना स्वाभाविक है, इसलिए वो कमजोर पड़ रहा था। जिस तरह मान लो एक जज साहब हो, जज की कुर्सी पर बैठ करके जो कटघरे में क्रिमिनल आता है, उन हर क्रिमिनलों का की सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद फिर उसको वो जजमेंट देता है अकॉर्डिंग टू लॉ। किसी को 3 मास जेल, किसी को 3 साल जेल, किसी को 10 साल जेल, किसी को आजीवन कारावास, किसी को फांसी की सजा, जैसे जैसे जिसका गुना होता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसी कटघरे में उसका अपना इकलौता बेटा खड़ा हो गया और उसने ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा अकॉर्डिंग टू लॉ फांसी ही है। अब वो जज साहब की हालत क्या होगी? पहली बात तो वो जजमेंट नहीं दे सकता है, दूसरे जज को नियुक्त करना पड़ता है। लेकिन वो हायर कोर्ट में अपील करेगा या नहीं करेगा? हायर कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। और क्या अपील करता है? क्या आज के नौजवान कभी कभी बुरी संगत में आकर के राह भटक जाते हैं? उसको सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन उसके पहले उसने कितने नौजवानों को फांसी पर लटका दिया, तब उसको ये सूझ नहीं आई? लेकिन पुत्र मोह ऐसी चीज है, इकलौता बेटा जब उस कटघरे में खड़ा हो गया तो उसको ये सूझ आने लगी और हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करता है कि उनको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। कहता है कि नहीं कहता है? ठीक इसी तरह अर्जुन भी भगवान से विनती करता है और भगवान को कहते, इतने लोगों को मैं मार करके उसका पाप क्यों अपने सिर पर लेना लूं? लेकिन उसके पहले कितना युद्ध कर चुका, कितने लोगों को मार चुका, तब उसको होश नहीं था कि इतने लोगों को मार करके मैं अपने ऐसे ही कोई बड़ा धनुर्धर थोड़ी बन गया है ना। लेकिन जब अपने बच्चों को देखा तो उसको ये ज्ञान जागृत हो गया कि इतने लोगों को मार करके मैं अपने सिर पर पाप क्यों लूं? इसीलिए भगवान कहता है, ये कायरता की बात मत कर अर्जुन, कायर मत बन, तू कमजोर मत बन। तुम्हें ये युद्ध करना ही होगा, जीवन के अंदर यह संघर्ष हर एक को करना ही पड़ेगा। उस समय मोह जागृत करते हुए कमजोर जब व्यक्ति पड़ता है तब ये ऐसी समझदारी वाली बातें करना शुरू करता है। इसीलिए कहा, एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान श्रीमद् भगवद गीता है कि जब कोई भी इंसान कमजोर पड़े तब भगवद गीता उस कमजोर को भी सशक्त बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति की कहानी है। आज परिवार के अंदर झगड़े किस बात पर होते हैं? किस बात पर होते हैं? जमीन और जायदाद, इसी बात पर होते हैं झगड़े। पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे तो दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं, है ना। और पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र या बड़े, वो भी कुछ बोल नहीं सके कि 5 गांव दे दो ना, 5 गांव ही तो मांग रहा है, इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा राज्य है, 5 गांव देने में क्या है, वो भी कुछ नहीं बोले। आज की दुनिया में भी भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है तो किस पर होता है? जमीन और जायदाद पर ही झगड़ा होता है। और अगर एक भाई विदेश में रहता, वहां से पैसा कमा कमा करके भेज करके जमीन खरीदते गए और जब एक दिन उसको आवश्यकता पड़ी पैसे की और वो आकर के अपने भाइयों से कहता है कि भाई हिस्सा कर लेते हैं, मेरे हिस्से की जो जमीन है मैं बेचना चाहता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो भाई लोग क्या कहते हैं? दूसरे भाई, जमीन बेचने की बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? कहेगा कि नहीं कहेगा? तुम्हें जो होता है कर लो, जमीन तो नहीं बेचेंगे। अरे भाई, मैंने अपने पैसे से भेजा है, वहां से कमा करके भेजा पैसा, तभी तुम लोग ने जमीन खरीदी। तो क्या कहता है? कुछ भी हो, तुम बड़ा था, तुम्हारे फर्ज थी, तुम्हारा ये था तुमने उसमें भेजा, उसमें कौन सी बड़ी बात की? जमीन बेचने की बात नहीं करना, और इतने साल तुम यहाँ खेती करने नहीं आए, हमने अपना खून पसीना बहाया है, इस जमीन को बेचेंगे नहीं, तुम्हें चाहे तो कोर्ट तक चले जाओ, जमीन नहीं बेचने देंगे। उनको मालूम है विदेश से बार बार कोर्ट की डेट पड़ेगी तो बार बार थोड़ी आने वाला है कि नहीं? देते हैं वो भाई लोग उसको, आवश्यकता पड़ने पर पैसा भी मिलता है, कहेंगे हमारे पास पैसा ही कहाँ है, खेडूतों को क्या मिलता है आजकल, कह करके बैठ जाते हैं। जितने भी कोर्ट में भाई भाई के बीच में केस चलते हैं, वो केस के पीछे क्या है? जमीन और जायदाद ही है। और कौरव जैसे भाई जो होते हैं वो पांडव जैसे भाई को देता है हिस्सा। कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाने के बाद भी डेट पर डेट पड़ती जाएगी, लेकिन सालों साल निकल जाते हैं, केस समाप्त नहीं होता है। भावार्थी न उन्हें सुख से रहने देना चाहते हैं, न अपने में समाना चाहते हैं, और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा द्वेष क्रोध अन्याय प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। ऐसी जब पारिवारिक स्थिति हो जाती है, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। इसी तरह सामाजिक स्थिति, आज समाज के अंदर शकुनी जैसे लोग हैं या नहीं है? है शकुनी जैसे लोग? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, शकुनी है हा? हा? अपने घर में शकुनी है? है कौन है अपने घर में शकुनी? हाँ, अपने घर में शकुनी कौन बैठा है? शकुनी का टारगेट कौन था? दुर्योधन, यूथ टारगेट था। शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी, शकुनी का टारगेट वो 100 कौरव थे। यूथ था और उनकी बुद्धि को घुमाता रहता था। कहा जाता है दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, सुयोधन उसके मां बाप ने रखा था। सुयोधन से दुर्योधन किसने मनाया? शकुनी ने मनाया। तो आज के यूथ भी किसके निशाने पर है? किसके निशाने पर है जो उनकी बुद्धि को घुमाता है? वो कौन है आपके घर में? कौन है? मोबाइल। ये मोबाइल ही तो शकुनी है हर एक के हाथ में। मां बाप समझते हैं भाई हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। आजकल पढ़ाई इतनी कठिन हो गई है, इसको एंड्रॉइड मोबाइल दे दो ताकि गूगल सर्च करके उसको जो कुछ भी जानना हो, जानकारी लेनी है तो ले सकता है, इंटरनेट उसमें हो और उसमें सब कुछ उसको हाथों हाथ पता लग जाए, उसको किसी पर डिपेंड न रहना पड़े, इधर उधर जाना न पड़े, लाइब्रेरी में जाकर बुक पहले जैसे हम लोग करते थे वैसे न करना पड़े, मोबाइल में ही देख लेवे मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, सब कुछ उसको हाथों हाथ माँ बाप कितनी शुभ भावना रख करके देते हैं मोबाइल। लेकिन आज पहले तो वो पढ़ाई के लिए यूज करता है, फिर धीरे धीरे कौन सी साइट पर चला जाता है, साइबर क्राइम्स होने लगता है और फाइनली जेल में पहुंच जाता है। तब माँ बाप को पता चलता है कि मोबाइल दिया ही क्यों उसको, कहते हैं ना ये शकुनी के संग में लगाया ही क्यों उसको, जिसने उसका जीवन खराब कर दिया और कहां पहुंचा दिया? जेल में पहुंचा दिया, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें देखता था। कई बार कई माताएं हमारे पास आती है, वो कहती है, बड़ी खुशी से बात करती है, कहते हमारे घर में 6 महीने का बच्चा है, पोतरा है, लेकिन बिना मोबाइल को देखे वो खाना नहीं खाता है कि नहीं है? है, उसको मोबाइल दिखाओ तुरंत खाना खाने लगता है, मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है। कई माताएं बहुत खुशी से कहती है, हमारा छोटा सा बच्चा 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसको जब बहुत तूफान मचाता है उसको मोबाइल पकड़ा देते, शांति से बैठ जाता है और उसको पता चलता है कैसे YouTube खोलने का और अपना कार्टून शो देखता रहता है। हमें नहीं आता है, लेकिन ये छोटा सा 4 साल का बच्चा YouTube खोल करके कार्टून देखता है, बड़ी खुशी से सुनाती है। लेकिन सोचने की बात है, अगर आज ये कार्टून देख सकता है तो 10 साल का जब होगा तो क्या देखेगा, क्या देखेगा? हाँ, अश्लीलता नहीं देखेगा इस YouTube पर? और उसकी बुद्धि क्या रहेगी, पढ़ाई में जाएगी? कभी नहीं एकाग्र होगी पढ़ाई में, क्योंकि इतनी 10 साल की उम्र में इतनी अश्लीलता चली गई है उसके दिमाग के अंदर कि इतना विकृत दिमाग हो गया। शकुनी क्या करता था? ये कौरव का दिमाग विकृत ही तो करता था। तो आज हर एक के हाथ में क्या है, शकुनी है? है शकुनी कि नहीं है? इसीलिए कहा है, इसके दास नहीं बनो, मालिक बनो बस, समझदारी से। हाँ, साधन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनो, नहीं तो वो आपका जीवन कैसा बना देगा, दुर्योधन आपको बना देगा, कौरव बना देगा, और आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना विकृत दिमाग आपका बना सकता है ये, इतनी उसमें पावर है। इसलिए धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु ही बंद कर देता है। और जब समाज में ऐसे बहुत शकुनी हो जाते हैं, हर घर घर में शकुनी बैठ जाता है, ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। और इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति, हर राष्ट्र के अंदर, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर राष्ट्र की स्थिति कैसी है आज? तो धृतराष्ट्र, इसीलिए कहा महर्षि वेदव्यास जी ने, आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि जब धृतराष्ट्र, ये राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठती है, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है, तो उस राष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठना चाहते हैं? धृतराष्ट्र, अंधा। अंधा यानी ये आंखों से अंधा नहीं था, पुत्र मोह में अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था, स्वार्थ में अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, अभिमान में अंधा था। ऐसा अंधा ही तो बैठना चाहता है। और इसीलिए जब ऐसा समय आ जाता है कि जब ऐसे अंधे व्यक्ति उस राष्ट्र की कुर्सी को, कुर्सी का ही तो खेल था, इसीलिए महाभारत के अंदर भी महर्षि वेदव्यास जी ने क्या बताया, कुर्सी का ही तो खेल था। आज वर्तमान समय में दुनिया में क्या हो रहा है, हर राष्ट्र में कुर्सी का ही तो खेल है, कुर्सी के लिए क्या नहीं करते हैं, है ना? और जब ऐसी हर राष्ट्र की स्थिति हो जाए तब, तभी तो भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, तभी तो भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, नहीं तो थोड़ी उभर सकता है। तभी तो गीता ज्ञान प्रत्यक्ष होगा संसार के अंदर। इसलिए कहा कि हर राष्ट्र की स्थिति आज ऐसी है कि जहां एक अंधा व्यक्ति राज करना चाहता है। चाहना क्या है? अंधे व्यक्ति की राज करने की चाहना है। और वो उस राष्ट्र को कहां ले जाता है फिर? अधोगति की ओर ही तो ले जाएगा, वो उठा थोड़ी सकेगा। इसीलिए तो कहा भारत का आध्यात्मिक ज्ञान ही तब विश्व को, विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ बन करके उभरेगा। वही गीता का ज्ञान कहो, आध्यात्मिक ज्ञान कहो, वही दीप स्तंभ बन जाएगा संसार के लिए। और इसी तरह वैश्विक स्थिति, आज संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को भी इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मुंह से निकालकर योगयुक्त बनाते हैं। इसीलिए एक वैश्विक स्थिति आज कैसी होती जा रही है, विश्व ऐसी संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तब कहा कि संसार के अंदर आज हर व्यक्ति विषय और व्यक्ति, विषय माना जब मनुष्य भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं ना, तो आरती में क्या कहते, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय मतलब विकृति, विकारों के कारण जो विकृत मन हो गया है उस विकृति से भगवान आकर के निकालता है। तब कहा कि महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था और वर्तमान समय में जो देखा उसी के आधार पर उसने परिवर्तन करने के लिए जो दिव्य ज्ञान दिया उसी को ही गीता कहा गया। तो चाहे एक व्यक्ति की मनस्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राष्ट्रीय स्थिति हो या वैश्विक स्थिति हो, हर एक को आज गीता ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं है? है, ठीक है। तो कल आगे सुनेंगे वो गीता ज्ञान क्या है और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, उसको आगे कल देखेंगे। अभी 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठ करके इसको समाप्त करेंगे।